ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि चैतन्य महाप्रभो के कथित शिक्षाष्टक में ये चौथा श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं धन भी नहीं चाहता हूँ, जन अर्थात अनुगामी जन चमचा जन नहीं चाहता हूँ, सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहता हूँ, और कविता इसका मतलब मानसिक साहित्यिक विकास ये सब भी नहीं चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक विकास में समसिद्धि है सभी इच्छाएं से विमुक्त होना, कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। परंतु ये आशा की पूरी करना संभव नहीं है, क्योंकि हम सब जीव है और सब जीव का लक्षण है चिन्मय, चेतना है, और चेतना में आशाएं हैं। तो भौतिक इच्छा भवबंधन का कारण है, तो वैष्णव दर्शन है कि हमारा प्रयास सभी इच्छाएं से विमुक्त होना नहीं होना चाहिए, कि हमारी सब कामना वासना शुद्ध होना चाहिए। तो अशुद्ध इच्छाएं क्या है? भौतिक धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए, और आध्यात्मिक कामना है श्री कृष्ण की सेवा करना। किस प्रकार? अहैतुकी भक्ति विचार में। इस अहैतुकी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोग, सब विश्ववासी जो धार्मिक है, चाहे भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हो, सब प्रार्थना करते, कोई कोई जीसस को, कोई कोई अल्लाह को, कोई कोई साईं बाबा को, या कृष्णा शिवा माता जी, और ये सब धर्म है। कभी कभी परस्पर शत्रुत्व होते हैं, परंतु ये सब लोग जो धार्मिक है उनका धर्म पालन करने का हेतु है। हेतु का मतलब कारण, और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझको धन जन सुंदरी दे दो, मुझको भौतिक सुविधा दे दो, इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तो ये सब सबों के बीच दुश्मनी होते हैं, परंतु सबका परिप्रेक्ष्य एक ही है कि भगवान है, हम है, और भगवान से हमें कुछ मांगना है भौतिक स्वार्थ के लिए। तो वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि ये सब भौतिक सुविधा भवबंधन का कारण है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि उदित है, ऐसे लोग तो किसी भी भौतिक लाभ के लिए, भौतिक सुविधा के लिए प्रयास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। वो सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए योग्यां मानव समाज से दूर जाते हैं और पर्वतों की गुहा में ध्यान करते। तो सामान्य लोग धन जन सुंदरी इत्यादि के लिए प्रयास और प्रार्थना करते हैं, और बुद्धिमान लोग जो योगी है तो वो सब चढ़ के, जिससे मन में रंज भी इच्छा नहीं रहेगी, इसलिए कठोर तपस्या करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं धन जन सुंदरी इत्यादि नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं उस प्रकार योगी नहीं हूं जो सभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा है। वो इच्छा क्या है? इच्छा है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो किस लिए सेवा करना? तो लगता है आप सब सेवा करते हैं, आप बिजनेस में, दुकान में, ऑफिस में आप सब सेवा करते हैं। तो आप किस लिए सेवा करते हैं? वो व्यापार के मालिक की अहितु की भावना से, अहितु की प्रेम से वो आपका कंपनी का मालिक की सेवा करते? नहीं, आप पैसा कमाने के लिए करते। आप नहीं बोलते वो मालिक को कि आप इतना महान है, आपके लिए मुझे इतना प्रेम है कि आपसे कुछ नहीं चाहते। नहीं, वो सामान्यतः लोग बोलते मुझे और दे दो, और पैसे दे दो, मैं तुमके लिए इतना सा काम करता हूँ, मुझको और ज्यादा पैसे दे दो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हे परम मालिक, परम स्वामी, परमेश्वर भगवान, मैं सेवा चाहता हूँ। तो विनिमय मैं क्या चाहते हो? सेवा करना चाहते? नहीं, खाली सेवा करना चाहते। मैं धन जन सुंदरी वो सब नहीं चाहते, क्योंकि ये सब भवबंधन का कारण है। क्योंकि जब तक मन में थोड़ी सी इच्छा रहती है भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, तब तक हमारा पुनर्जन्म पड़ना पड़ेगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। इसका कारण क्या है? भौतिक इच्छाएं। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि यदि मन में हमारे खाली ये ही इच्छा है एक लाडू खाने के लिए, तो इसलिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर एक भक्त बोले कि तो हम क्या करें? तो हम सब लाडू खाने चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोले भगवान कृष्ण को अर्पण करके लाडू खाओ। इसको डव टेलिंग बोलते, सभी भौतिक इच्छाएं नियुक्त होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे धन, हम न वो सब ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहते हैं सुबह शिक्षाष्टक पाठ करते बोलते हैं ना धन हम न चाहे, फिर वो दिन का समय बाहर जाते कलेक्शन करने के लिए, हमको धन दे दो, ना धनम ना जनम, धनम जनम सब कुछ दे दो। तो हम धन चाहते हैं खुद के लिए नहीं, हम जानते हैं कि आम लोग की प्रबल आसक्ति होती है धन के लिए, इसलिए वो आम लोग मूर्ख लोगों को कृपा प्रदान देने के लिए हम ऐसे लोग से पैसा मांगते, हमको दे दो हम भगवान की सेवा में लगवाएंगे और इससे आपका कल्याण होगा। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मैं ज्यादा धन मिलूंगा मेरा कल्याण होगा, लेकिन हम बोलते हैं हमको दे दो हम भगवान की सेवा में वो सब पैसा इस्तेमाल करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। तो खुद के लिए हम पैसा नहीं चाहते हैं, परंतु यदि आप हमको 100 करोड़ रुपये देंगे, कोई मुझको 100 करोड़ रुपये देंगे, आप देंगे, लगते है आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस जीवन में तो संभव नहीं होगा, आप दिल दे दो, वो सबसे महत्वपूर्ण। तो यदि आप देंगे हम सब भगवान की सेवा में लगा देंगे, फिर और भी पैसा मांग लेंगे। जैसे ये सब बड़े बड़े अमीर वो सब क्या नाम है, अंबानी, टाटा, बिरला, हिंदुजा, तो बहुत बड़ी इच्छा है ये सब लोग पैसा के लिए, उनके पास कितना पैसा है शायद वे लोग भी नहीं जानते, इतना सा है, हजार हजार करोड़ करोड़ है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो भक्तों भी भगवान की श्री कृष्ण की सेवा के लिए पैसा चाहते, लेकिन अगर पैसा नहीं है हम कृष्ण भक्ति करेंगे, पत्रंग पुष्पंग फलंग तयम हम भगवान को अर्पण कर सकते, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए बड़ा मंदिर बनाना पड़ेगा, बहुत किताब छपाना पड़ेगा। तो इसलिए हम जन साधारण से पैसा मांगते श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जानम, न जानम का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे अनुगामी होंगे, जय भक्ति विकास स्वामी ऐसा कहेंगे, वो ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए हमें लोग के बीच जाना है और सबको कहना है कृष्ण भक्ति करो, और ऐसे हमारे अनुगामी होंगे शिष्य होंगे। परंतु यदि कोई गुरु सोचते मैं गुरु है मैं गुरु हूँ ये सब लोग मेरे अनुगामी हैं, तो ऐसे सोचना भक्ति की विपरीत होते, ऐसे सोचना चाहिए ये सब शिष्य है मेरे गुरुदेव, ये सब शिष्य मेरे पास भेज दिया, वे सब वैष्णव है जिससे मैं श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के तरफ से शिक्षा दे सकता हूँ, परंतु मेरा कुछ भी खुद का अधिकार नहीं है किसी को शासन देने के लिए। शिष्य का मतलब जो गुरु के शासन में। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या थारो ए देश। तो वैष्णव तो इस प्रकार लोक संग्रह करते हैं। भगवद गीता में वो शब्द है लोक संग्रह। परंतु अपना प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सेवा के लिए, ये सब सेवा के लिए है। हम धन जन और सुंदरी, हम भी जो सन्यासी है तो हमें सुंदरी स्त्री का संगम नहीं करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में वो सब सन्यासी जो है उनकी चरम इच्छा है सुंदरी स्त्री सेवा करना। ब्रज गोपियां राधा ललिता विशाखा, तो वे स्त्रियों की सेवा, दिव्या चिन्मय देवियों की सेवा, वैष्णवों की चरम लक्ष्य। और धन, भक्तों का धन है प्रेम धन, कृष्ण भक्ति धन। तो यही सब परिप्रेक्ष चैतन्य महाप्रभु जो हमको सिखाते हैं, वो इस विचार तो साधारण सामान्य विषयी इंद्रिय सुखाकांक्षी लोगों का विचार से एकदम विपरीत है। सामान्य लोग का पूरा जीवन धन जन और सुंदरी की खोज में जाते और वैष्णवों की इच्छा है धन जन सुंदरी वो सब उस सबों से दूर रहना और कृष्ण की सेवा में पूरा तन्मय होना। अहैतु की भक्ति, अहैतु की अर्थात हम धन जन सुंदरी कविता मतलब मैं बहुत बड़ा शिक्षित होऊंगा, मैं बड़ा पंडित होऊंगा, तो ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। तो हम सब कुछ जो करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, यही भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु और बोले मम जन्मनि जन्मनि श्रेय, मतलब चैतन्य महाप्रभु मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। सामान्यतः जो धन जन सुंदरी की इच्छाओं को वर्जन करना चाहते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब भौतिक इच्छाओं को छोड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मोक्ष भी नहीं चाहते। यदि भगवान की इच्छा हो हम बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ले सकते, तो इसका मतलब है कि हम कृष्ण के दास हैं, वे स्वामी हैं और उनकी इच्छा के अनुसार हम सब कुछ करते। हम नहीं बोलते मैं भक्ति करता हूँ तो मुझको मोक्ष दे दो। तो अगले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु आई नंद चन जय किंकर पति तंग माम विषय में भवम बुधौ कृपया तब पाद पंच विचिंत, वही कहते हैं इस न धनम न जानम श्लोक कहने के बाद, मतलब हम इस भौतिक संसार में रहना नहीं चाहते परंतु हम समर्पित सेवक है और हम सेवा करते हैं, उसमें कुछ शर्त नहीं है। वो भगवान जो चाहते हैं हम वैसे करते हैं, वो ही भावना होना चाहिए। इसके पहले 3 नंबर श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध, चुनादपि सुनिचेन थोरोरिव सहिष्णु अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो इस न धनम न जानम भाव हो सकते हैं यदि हम अच्छी तरह समझते कि मैं घास से तुच्छ हूं। यदि हम सोचते मैं बहुत बड़ो हूं, ईश्वर हम अहम भोगी, तो हम जगत का दर्शन करने से और जगत में सभी वस्तुओं का भोग करने की इच्छा करेंगे। यदि हम माया से प्रभावित होते हैं तो हम सब कुछ चाहेंगे, हम धन जन सुंदरी सब कुछ चाहेंगे। परंतु यदि हम जानते हैं कि मैं अति तुच्छ जीव हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, हम सब जन्म लेते हैं और हाथ में कुछ नहीं है और जीवन में हम बहुत संघर्ष करते हैं और पैसा लाते हैं, लेकिन प्रस्थान करने का समय हम कितना पैसा साथ में ले जाते, एक नया पैसा भी नहीं। तो इसको समझ के भक्तों ये सब तुच्छ और क्षणिक भौतिक सुविधाओं के लिए प्रयास और प्रार्थना नहीं करते। धन से हमारा क्या फायदा होगा? धनी लोग बहुत चिंतित होते, जिनके पास पैसा नहीं है और पैसा की आशा भी नहीं है, निश्चिंत। और जिनके पास ज्यादा पैसा, जितने भी पैसा हो इतने से चिंता होते हैं। तो जो वास्तव में नम्र है वे जानते हैं कि उस जगत में और धन जन सुंदरी सब कुछ जो है वो सब मेरे भोग्य नहीं है, ये सब कृष्ण की संपत्ति है। और यदि कृष्ण की इच्छा से मेरे हाथ में कुछ धन आएगा या कुछ लोग मुझको नेता जैसे ग्रहण करते हैं, या यदि कुछ सुंदरी स्त्री आते हैं, तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये भक्ति की भावना है। चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टक से हमको उसे कहते हैं भक्ति क्या है। भक्ति का उद्देश्य नहीं है धन जन सुंदरी के लिए प्रार्थना करना, भक्ति है अहितु की सेवा के लिए प्रार्थना करना, ये शुद्ध भक्ति है। यह अहितु की शब्द श्रीमद् भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक में आता है, सवाय पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे, अहितु की अप्रतिहता या आत्म सुप्रसिद्धति, कि हर एक मानव के लिए परम धर्म यही है अधोक्षज, अर्थात त्रिगुण के अतीत, भौतिक प्रकृति के अतीत, साधारण भौतिक इंद्रियों के अतीत भगवान की अहैतुकी अप्रतिहता सेवा। अहैतुकी का मतलब वो सेवा जो केवल सेवा के लिए करना है, खाली सेवा सेवा सेवा, और वो सब सेवा करने के लिए क्या चाहते, नहीं कुछ भी नहीं, मैं और भी सेवा करना चाहता। तो ऐसी अहैतुकी अर्थात निस्वार्थ भाव कैसे हो सकते, केवल श्री कृष्ण की सेवा में, क्योंकि कृष्ण भगवान उनका नाम का अर्थ है सर्व आकर्षक, और उनके गुण उनके चरित्र इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि इनको प्रेम अर्पण करना स्वाभाविक है। तो अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता इसका मतलब है कि किसी अवस्था में भी किसी कारण से भी हम भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, सुख में दुख में, इस जन्म में अगले जन्म में, पशु पक्षी कीट आदि शरीर अगर हम भविष्य में धारण करेंगे फिर भी हमारी एक ही इच्छा होगी श्री कृष्ण की सेवा करने, वो अप्रतिहता भक्ति है। और केवल इस प्रकार भक्ति करने से हम आत्मसंतोष मिल सकते। तो ये अहेतु की भक्ति है और ये सब जीव का परम प्राप्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु परिपूर्ण भगवान है परंतु लोग शिक्षा के लिए वे सन्यासी के रूप में इस भारत देश में लीला भक्ति प्रचार लीला विलास किए हैं। तो वे सन्यासी थे और अधिकांश व्यक्ति गृहस्थ है, तो गृहस्थों के लिए कुछ धन उनके पास होना चाहिए। आपका महाराष्ट्र में ठुकराम थे तो सब ठुकराम जैसे सांसारिक जीवन नहीं चला सकते, तो कुछ धन आपके पास होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का मतलब जन कम से कम चार, हम दो हमारे दो, और पूर्व काल में ज्यादा भी थे और सब। परिवार का मतलब नहीं है हम दो हमारे दो, तो दादा दादी नाना नानी काका काकी मामा मामी यही सब भी सब भाइयों एक साथ में, यही परिवार है। आजकल परिवार शब्द का नया परिभाषा है, परंतु परिवार का मतलब विशाल। तो जन होना चाहिए और गृहस्थों तो समाज में रहते हैं, तो दूसरे लोगों से व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करता हूँ हरे कृष्ण मैं तुमसे कुछ बात नहीं, मुझको बात मत बोलो। तो ऐसे व्यवहार दूसरे लोगों से व्यवहार होना चाहिए। तो धन झन सुंदरी तो गृहस्थ जीवन में तो स्त्री होना चाहिए, मैं एक मेरे दो संभव नहीं है, दो से दो आते एक से दो नहीं आते। तो कैसे गृहस्थों के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करना संभव है, कैसे संभव है? सब क्या सबका संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा? नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी आप धन जन सुंदरी के बीच भक्ति कर सकते हैं। कैसे? इस प्रकार समझना चाहिए कि ये सब धन जन सुंदरी के बीच में हूँ लेकिन वास्तव में मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण के है। और जैसे गुरु के शिष्यों है लेकिन वैष्णव गुरु ऐसा नहीं सोच, मैं बड़ा गुरु हूँ मेरे इतने शिष्य, ऐसे नहीं सोचते। तो इस प्रकार भावना होती है कि भगवान श्री कृष्ण मुझको ये जिम्मेदारी दे ये सब शिष्यों को भक्ति शिक्षा प्रदान करना, मार्गदर्शन देना, तो उनकी सेवा में मैं करता हूँ। तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन में वो भक्त सोचते कि तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मैं विवाहित हूँ, तो ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, बच्चों है, तो श्री कृष्ण की सेवा में मैं इस जिम्मेदारी ग्रहण करता हूँ उनको मार्गदर्शन देना। वे सब कृष्ण के भक्त है, मैं उनके सेवक हूँ और पति के रूप में मैं उनकी सेवा करता हूँ। और महिलाओं भी इस प्रकार सोचते कि मैं धर्म पत्नी हूँ, धार्मिक पति की सेवा करता हूँ, हम दोनों एक साथ कृष्ण सेवा करते हैं। और वो धन जो हमारे हाथ में आते हैं गृह चलाने के लिए, वो सब हम गृह चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु हमारा गृहस्थ जीवन का उद्देश्य विषय इंद्रिय सुख नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पति पत्नी बच्चों एक साथ कृष्ण सेवा करेंगे। तो ये आदर्श गृहस्थ जीवन है, उसमें स्वार्थ की इच्छा नहीं है, अथवा ऐसे समझना चाहिए कि हमारा वास्तव स्वार्थ है कृष्ण भक्ति करना, वो परम स्वार्थ है, आध्यात्मिक स्वार्थ है। और क्या लगा, तो ऐसे विचार सामान्य लोगों का विचार से बिल्कुल विपरीत है, ये भक्ति विचार। तो हम इस श्लोक से चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि भगवान से धन जन सुंदरी दुख से बचाना भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दुख होते हैं इस भौतिक संसार में, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। भक्तों का विचार में भौतिक कष्ट उस स्थिति ग्रहण करना चाहिए अगर उसमें सेवा करने का अवसर हो, कृष्ण सेवा, और भौतिक सुख कृष्ण भक्ति करने का अवसर के बिना हम नहीं चाहते। यही शुद्ध भक्ति का विचार है। तो ये भावना बहुत उच्च है ना, तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षित प्रेम भक्ति तो वो हमारा लक्ष्य है। हम सब इस भौतिक संसार में है, अनादि कर्म फल है, परिभवान वजले थोड़ी बारी न देखी ऊपर तो हम इसी स्थिति में है, परंतु हमारा लक्ष्य है गोलोक धाम जाना, कृष्ण के पास जाना। तो हम वो पूरा शुद्ध प्रेम से दूर होते हुए भी हमारी आशा रखना चाहिए कि हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में अग्रसर होंगे और धीरे धीरे चैत्य दर्पण मार्जनम हरि नाम करने से चित्त शुद्धि होगी और हम अधिका प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण की कृपा से वो प्रेम राज्य में गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण। सो वेरी गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे। चुपचाप बैठ के सुन लिया है। हाँ, क्या समन्स आस्किंग हियर? हाँ, त्रिनादपि सुनिचेन कल का विषय है, आज का विषय भी है, सनातन विषय। कल उसके बारे में बताया, कल का प्रवचन के लिए के बारे में एक प्रश्न है।
भौतिक जगत का स्वभाव है कि यहाँ जो भी प्राणी है उनको जीवन जीने के लिए भी सहिष्णु होना पड़ेगा, सहिष्णु होना चाहिए। जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो वो सब चीज के सामने अगर वो व्यक्ति सहिष्णु नहीं है तो जी नहीं सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो सहिष्णुता सिखाई है वो अलग है। और अगर व्यक्ति सहिष्णु नहीं है तो नम्र नहीं बन सकता।
अगर सहिष्णु नहीं है तो
नम्र भी नहीं बन सकता।
हाँ,
तो उसका क्या संबंध है?
प्रैक्टिकल नहीं है। आपका प्रस्ताव क्या है?
कैसे
तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद एक कहानी बोले कि नारद मुनि का एक शिष्य था, एक सांप। तो सांप का स्वभाव क्या है? लोगों का पंख पकड़ के उसको क्या बोल, दंशन करते। तो इसलिए और सब लोग सांप से भय करते हैं और क्या पत्थर फेंकते हैं उसको। तो वो सांप नारद मुनि के शिष्य होने के बाद एक बार नारद को बताया कि अभी मुझे बहुत समस्या है क्योंकि मैं अति नम्र हूँ, तो फिर भी ये बच्चों मुझको पत्थर फेंकते हैं। तो नारद मुनि बताया, तो तुम क्या बोलते, तो जैसे आक्रमण करोगे ऐसे अभिनय करो, फिर वो सब बच्चों भाग जाएंगे। तो ये व्यवहारिक व्यवहार है। तो ये जैसे कि श्रील प्रभुपाद, तो ये सब भक्ति शिक्षा हम कैसे हमारा व्यवहारिक जीवन में ग्रहण कर सकते हैं? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद और सब आचार्यों का व्यवहार का आदर्श का विचार करना चाहिए। तो नम्र होना का मतलब नहीं है कि कस जो मध्यम कनिष्ठ अधिकारी है मध्यम अधिकारी है जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और वे समाज में जाते हैं और लोगों से व्यवहार करते हैं, तो इसलिए उनके लिए सामान्य व्यवहार करना चाहिए लोगों से। ये व्यवहार पूरी सहिष्णुता, लोग जो भी करते हैं हम सहन करते हैं, यही व्यवहार परमहंस भक्तों का है। जैसे वर्णन है श्रीमद् भागवत में, ऋषभदेव अवंती ब्राह्मण, तो वो अवंती ब्राह्मण तो परम भक्त है, और जैसे वो वृक्ष तो पानी भी नहीं मांगते, तो अवंती ब्राह्मण तो भोजन के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, किसी से नहीं मांगा, और कुछ भी मिल के क्या हो तो ऐसे सामने भोजन रख दे, और लोग उस उनके पास आकर ओ क्या बोलते थू फेंक दे उस भोजन में, या प्रसाद किया पैसाब किया उसमें, क्योंकि वो वैष्णव था और लोग तो वैष्णव द्वेषी थे, और ऐसे व्यवहार किए तो फिर भी वो अवंती ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तो ये पूरा सहिष्णु गुण है, ये शुद्ध भक्त परमहंस भक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। जो मध्यमाधिकारी है, जो समाज के बीच में रहते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं होगा, परंतु वो भावना होना चाहिए, ऐसे भावना होना चाहिए। और बीच बीच जो सब अंतराय जो आते हैं या उपद्रव जो आते हैं, तो भक्तों का ये सब सहनना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद एक प्लेन में थे, उड़ान में, तो उस समय वो प्लेन में स्मोकिंग धूम्रपान अलाउड था, और स्मोकिंग नो स्मोकिंग दोनों एरिया था प्लेन में, लेकिन पूरा प्लेन में और सब लोग सिगरेट पीता था। तो श्रील प्रभुपाद के सेवक वो दूसरा पैसेंजर को बताना चाहता था, तो ये गुरु महाराज है स्मोकिंग मत करो, प्रभुपाद नहीं नहीं ऐसे मत करो, हम सहना करेंगे। Is that all right? वो चैतन्य चरितामृत में वो लिखे कि अगर कोई वो वृक्ष का काटने के लिए आते तो खिलाफ नहीं करते, लेकिन अगर कोई मेरे पास आएगा मेरा हाथ काटने के लिए, मैं खिलाफ करूँगा या भाग जाऊँगा, क्योंकि इस हाथ से ही मेरी सेवा है पुस्तक लिखने का, जाप करने का। ईश्वरीय सेवा के लिए है, यदि भगवान की इच्छा हो और कोई ऐसा करेंगे तो हमें सहना पड़ेगा। जैसे मेरे एक गुरु भाई भक्ति राघव स्वामी, तो एक बार 30 साल के पहले ऐसे वो मायापुर, इसको मायापुर में थे, और रात का समय कुछ गुंडा आया है मंदिर का आक्रमण करने के लिए, और मूर्ति को चोरी करने के लिए, वो छोटा सा अष्टधातु मूर्ति। तो भक्ति राघव महाराज गए थे वो श्री श्री राधा कृष्ण विग्रह रक्षा करने के लिए, तो कैसे रक्षा कर सकते, तो उस समय भी विकलांग थे, तो दो पायंग थे, लेकिन एक तो काम नहीं किया और उनके पास बंदूक नहीं थे, चाकू कुछ भी नहीं था, दंड भी नहीं कुछ, तो फिर भी वहां गए और सब कुंड तो बम फेंका और एक पांव तो ऐसे पूरा नष्ट हो गया है और ऐसे मंदिर का फर्श में भक्ति राघव महाराज ऐसे थे और इतना सा खून के बीच में हरे कृष्ण ऐसे बोला और एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। तो मेरा कर्तव्य था राधा कृष्ण की रक्षा करने का प्रयास करना, तो वो किया था। और एक पाँच जो था तो अभी नहीं है, ठीक है भगवान की इच्छा है, तो उसके पहले दो पांव से चलते थे, अभी तीन है, मतलब एक और दो क्या बोलते हैं क्रचेस, और कभी भी कंप्लेन नहीं किया, भगवान की इच्छा ऐसे सोचते। और अगर कोई पूछते तो ऐसा कैसे हो गया, वो खाली बोलते तो भगवान की इच्छा, उसके बारे में कभी भी नहीं बोलते। तो ये वैष्णव का गुण है। सहिष्णुता, नहीं बोलते कि भगवान ऐसे क्यों किया, मैं सेवा करता हूं, तो ऐसे नहीं बोलते, भगवान की इच्छा है, ठीक है मैं सेवा करूं। तो ऐसे उदाहरण से हम प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भक्त है हमारे बीच, हम बहुत पुराने काल से अवंती ब्राह्मण के बारे में सुनते हैं और शायद हम सोचे वो बहुत प्राचीन काल में था और खाली शास्त्र में है, लेकिन हमारे बीच आज भी ऐसे भक्त है। तो अगर वे कर सकते तो ऐसे भक्तों की कृपा से हम भी कर सकें। खाली पुस्तकी विद्या नहीं है, हम भी कर सकते अगर हमारी भक्ति निष्ठा होते हैं, होना चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ये अशोक साहू सिकंदराबाद से, उनका प्रश्न है, ऋणादपि सुनीतेन करोरपि सहि सुना ममानि न मानदेन कीर्तने सदा हि। हाउ टू प्रैक्टिस अमानि न इफ वन स्पाउस कॉन्स्टेंटली टॉर्चर यू इन वेरियस वेज, इफ वन वाइफ गिव्स लॉट ऑफ एगोनी टू हर इन लॉज, हाउ द पर्सन डील विद अ वाइफ लाइक हर।
Say it in Hindi.
अशोक साहू जो सिकंदराबाद से हो, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऋणादपि सुनीचेन, जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं करोड़ नहीं सुना, तो कैसे अमानी में अमानी न जो बताया चैतन्य महाप्रभु, उसको कैसे समझे कि हमारी जो उनकी जो पत्नी है वो पूछ रहे हैं कि अगर उनको परेशान कर रही है तो हम कैसे उसका अनुशीलन कर सकते हैं जीवन के अंदर।
लगते आधुनिक जमाने में हर एक घर में चैतन्य महाप्रभु ऐसी स्थिति बनाया जिससे हम सब अमान न मान देने का अभ्यास कर सकते। कैसे वैसे अवसर हो, आप बहुत बड़ा भाग्यवान है कि चैतन्य महाप्रभु आपको इतना सा अच्छा अवसर दिया अमान ना मान देना अभ्यास करने के लिए। मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं, मैं संन्यास लिया था युव काल में। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। गृहस्थ जीवन में सहिष्णुता होना चाहिए, नहीं तो विस्वर हो। हरे कृष्णा। माइक माइक माइक।
अभी हमने सहिष्णुता के बारे में चर्चा की, पर
हाँ बालना बालना सहज है, बालना सहज और वास्तव में करना कठिन। लेकिन यदि इसके बारे में हम नहीं कहते तो उसके बारे में हमारी कुछ भी धारणा नहीं हो, तो पहले हमें कम से कम चर्चा करना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे हम अभ्यास कर सकते हैं। तो नहीं तो अगर सहिष्णुता नहीं हो तो हम कैसे जगत में रह सकते। या छोटी छोटी बातें से यदि हम ऐसे गुस्सा हो जाते तो कैसे हम रह सकते। हाँ तो प्रशांत दलान मतलब जो विष्णु और वैष्णव द्वेषी, उनका द्वेष सहना नहीं है। वो वैष्णव नम्रता नहीं है। जो विष्णु और वैष्णव द्वेषी है ऐसे लोग को यथार्थ दंड देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमको कुछ बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए उसको सहमना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास वैष्णव है तो एक वैष्णव तो कुछ भी निंदा अपराध सहन सकते। लेकिन वो वैष्णव के साथ दूसरा वैष्णव अगर हो तो वो दूसरा वैष्णव का वैष्णव निंदा, दूसरे वैष्णव की निंदा करना, तो वो दूसरा वैष्णव का वो निंदा सहना नहीं है। अगर कोई मुझको अपराध करते तो वैष्णव नहीं सोचते कि वो अपराध, वो अगर कोई मेरे बारे में बोलते तुम बदमाश हो, दुर्ता हो, भंडा हो, तो वैष्णव का चिंतन ऐसे होना चाहिए तो वो सचमुच बोलते। लेकिन पास में अगर दूसरा वैष्णव है तो वो वैष्णव तो अपराधी का यथार्थ कम से कम मौखिक दंड देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।